अभिमान और आशिका अपने कमरे में थे। अभिमान मिस्टर सिंघानिया की बहुत इज्जत करता था, लेकिन पहले आशिका के मरने के बाद और अब आशी से शादी से इनकार के बाद उनके रिश्ते पूरी तरह बिगड़ चुके थे। आज तो उनके बीच बहुत बुरी तरह से बहस भी हुई थी। भले ही अभिमान ने उनके साथ बहस की थी, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि तृप्ति के लिए उनकी नफरत पूरी तरह जायज़ है। तृप्ति के बारे में सोचते हुए अचानक अभिमान को ख्याल आया कि शायद आशिका आज भी इस दुनिया में जिंदा हो और तृप्ति सबसे उसके बारे में छुपा रही हो। अभिमान ने इस बारे में आशिका से पूछा। उसने उसकी आंखों का रंग तक बता दिया था, जिसे सुनकर एक पल के लिए आशिका को झटका सा लगा। अभिमान उसे उसके बचपन के बारे में पूछ रहा था। आशिका को कुछ भी याद नहीं था। उसने सिर झटका और बिना किसी भाव के कहा, मुझे बचपन का कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन जहां तक याद आ रहा है, हाँ, दो लड़कियां एक साथ जरूर थीं। उनमें एक मैं और दूसरी सेलिना थी, जो मिस्टर हिल की बेटी है। तुम्हें तुम्हारे बचपन का कुछ याद नहीं है? तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है और तुम लंबे लंबे कोट्स तक बिना पलक छपकाए लिखती रहती हो। मैं ही नहीं मान सकता कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है। क्या सच में बचपन का छोटा सा हिस्सा भी तुम्हें याद नहीं है? अभिमान ने दोबारा पूछा। उसे लगा कि आशिका उसे टालने के लिए ये सब कह रही है। अब तक आशिका ने इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभिमान के कहने पर उसने भी गौर किया। हाँ, उसकी याददाश्त काफ़ी तेज़ थी और स्कूल कॉलेज में भी हमेशा उसने टॉप किया था। अभी भी उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था, फिर भी अजीब बात थी कि उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं था। आशिका ने अभिमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन बोली, मुझे तृप्ति के साथ एले में बिताए हुए हर एक मोमेंट अच्छे से याद है, पर उसके पहले का ठीक से कुछ पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आशिका खोई हुई थी। अभिमान को लगा कि वो याद करने की कोशिश कर रही है। उसने आशिका के बाजू को प्यार से सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ और वो सच में इस दुनिया में नहीं है। इतना कहकर अभिमान फ़िलहाल के लिए अपने कमरे से वर्क स्पेस की तरफ चला गया था, जो उसी के कमरे से जुड़े दूसरे कमरे में बनाया हुआ था। वहीं आशिका बाथरूम में आ गई थी। उसके दोनों हाथ बाथरूम की स्लैब पर टिके हुए थे और वो खुद को आईने में देख रही थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? अभिमान ने जो आंखों का कलर बताया है वो बिल्कुल मुझसे मैच खाता है। नहीं, मैं उनकी खोई हुई बेटी कैसे हो सकती हूँ? और बिना सबूत के कुछ भी कहना भी गलत होगा। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। ऊपर से अगर मैं उनकी बेटी हुई भी तो वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, उल्टा मुझे भला बुरा बोले जा रहे हैं। अगर गलती से भी मैं उनकी बेटी निकली तो कभी उन्हें इस बात का पता नहीं लगने दूंगी, आशिका ने सख्त आवाज़ में कहा। आशुतोष जिस तरह बार बार उसके खून पर सवाल उठा रहे थे और तृप्ति की वजह से उसे भला बुरा कह रहे थे, उसके बाद आशिका को उनसे चिढ़ होने लगी थी। लेकिन आशिका को बार बार ये ख्याल परेशान भी कर रहा था, ऐसे में एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता था। आशिका ने बिना सोचे समझे तुरंत अभिमन्यु को कॉल लगाया। इस वक्त अभिमन्यु इशिका के साथ एक रेस्टोरेंट में था, एक 5-स्टार रेस्टोरेंट जो अभिमन्यु ने पूरा उनके लिए बुक किया था। इस वक्त उनके किचन एरिया पर अभिमन्यु और इशिका का कब्जा था। जब पिछली बार इशिका प्रेग्नेंट थी तब उसने अभिमन्यु के लिए खाना बनाया था और वो यही चाहती थी कि वो उसकी मदद करे। तब से ये अभिमन्यु की विशलिस्ट में शामिल हो गया था, लेकिन अफसोस कि उसके बाद उन दोनों को कभी साथ में किचन में जाने का टाइम ही नहीं मिला। अभिमन्यु सब्जियां काट रहा था। इस बीच उसका मोबाइल बजा तो इशिका ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, बचने का काफ़ी अच्छा तरीका है मिस्टर राजवंश, लेकिन कॉल रिसीव नहीं करना है। ऑलरेडी काफ़ी धीरे काम कर रहे हो। आशिका का कॉल है, तुम्हें पता है ना वो बिना वजह कॉल नहीं करती, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है जाओ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प करना, इशिका ने जवाब दिया और फिर वापस काम में लग गई थी। वहीं अभिमन्यु आशिका से बात करने के लिए किचन से बाहर आकर चेयर पर बैठ गया था। उसने कॉल रिसीव किया और गंभीर आवाज़ में कहा, उम्मीद है हमारी राजवंश फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक नहीं किया होगा। आपकी बात करने का लहजा बता रहा है कि मुझसे बेहतर आप उन्हें जानते हैं। खैर, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते में यकीन नहीं करती हूँ। मुझे आपसे किसी और बारे में बात करनी है मिस्टर राजवंश, आशिका ने गंभीर लेकिन धीमी आवाज़ में कहा। हालांकि अभिमान उसके आसपास नहीं था, लेकिन फिर भी आशिका को डर था कि कहीं वो उसकी बात ना सुन ले। आशिका कुछ पल रुकी और फिर आगे बोली, क्या आप मिस्टर आशुतोष सिन्हानिया की बेटी के बारे में जानते हैं? वो बच्ची जिसे तृप्ति ने किडनैप किया था, क्या वो लड़की आशुतोष और तृप्ति की बेटी थी? नहीं, वो तृप्ति और आशुतोष सिंघानिया की नहीं बल्कि काजल सिंघानिया और आशुतोष सिंघानिया की बेटी थी। ज़रूर तुम्हें अभिमान से उसके बारे में पता चला होगा, वो तो सालों पहले मर चुकी है और उसे तृप्ति ने किडनैप किया था। अनफॉर्चुनेटली सारा ब्लेम अभिमान पर आया था, उसका इरादा बुरा नहीं था, ये जानते हुए भी सब कहीं ना कहीं उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? अभिमन्यु ने पूछा। मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर मेरी आंखों का कलर मिस्टर सिंघानिया से मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनकी बेटी हूँ, ये इत्तेफाक हो सकता है, पर आशिका हिचकिचाते हुए अपनी बात अभिमन्यु के सामने रख रही थी। वो ठीक से कह तक नहीं पा रही थी। उसकी लाइन को पूरा करते हुए अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इत्तेफाक में यकीन नहीं करता हम आशिका। तृप्ति जैसी औरत किसी भी हद तक जा सकती है। ऊपर से उसे देखकर मुझे मालविका की याद आती है। उसने बचपन में इशिका को बदल दिया था और 23 साल तक किसी को पता नहीं चला था कि इशिका राधिका सिंघानिया की बेटी है। उसका जवाब सुनकर आशिका बिल्कुल चुप हो गई थी। उसकी आंखें नम होने लगी थी। अब तक तृप्ति ने हमेशा उसके साथ अत्याचार किया, तो ये बोलकर कि उसके बाप ने तृप्ति के साथ गलत किया था, वो लड़की थी इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया और साथ ही उसकी वजह से तृप्ति को भी घर से निकाल दिया गया था। आशिका के सुबकने की आवाज़ अभिमन्यु को सुनाई दी तो वो उसे समझाते हुए बोला, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। इशिका ने भी काफ़ी कुछ झेला था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी लाइफ भी आसान नहीं रही है। तुम चाहो तो हम इसका पता लगा सकते हैं, हम DNA टेस्ट करवा सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब अरेंज कर दूंगा। सोचो अगर सिंघानिया फैमिली के सामने सच्चाई आ गई तो वे तुमसे नफरत नहीं करेंगे, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी और तृप्ति का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अभिमन्यु आशिका के लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए तैयार था, ये उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आशिका ने तुरंत जवाब में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, मुझे किसी की बातों और तानों से फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर कोई सच है भी तो मैं नहीं चाहती कि कुछ सामने आए। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और ख़ुद को हैंडल करना जानती हूँ। जब मेरी लाइफ में मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वे मेरे पास नहीं थे, तो अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। उनका होना या ना होना मेरे लिए एक बराबर है। अभिमन्यु ने आशिका के साथ ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही इस बारे में आगे बात करने का सोचा। उसकी आवाज़ साफ जाहिर कर रही थी कि वो कितनी ज़्यादा हर्ट थी। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा हुआ तुमने बताया और तुम्हारा दिल हल्का हो गया। फिर भी कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आए तो तुम कभी भी मुझे कॉल करके इस मामले में मदद ले सकती हो, अभिमन्यु ने नरम लहजे में कहा।
थैंक यू सो मच मिस्टर राजवंश, प्लीज इस बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा, अभिमान से भी नहीं। मेरे एक छोटे से शक से मैंने ही चाहती कि किसी को थोड़ी सी भी उम्मीद बंधे। कल को मैं टेस्ट करवाने गई और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो वे मुझे और गलत ठहराएंगे और मुझसे नफरत करने लगेंगे कि मैं उनकी मरी हुई बेटी की जगह लेना चाहती हूँ। पहले ही उन्हें इस बात से चिढ़ है कि तृप्ति ने मुझे उनकी बेटी का नाम दे दिया, आशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वही होगा। थैंक्स। इशिका कैसी है, क्या उनकी याददाश्त में कुछ असर आया, उन्हें चीज़ें याद आ रही हैं क्या, आशिका ने बातचीत के रुख को बदलते हुए कहा। अभी तक तो नहीं, लेकिन जब से मैंने उसे सच बता दिया है उसके बाद वो मेरे साथ पूरी तरह कंफर्टेबल है। मेरे लिए यही काफ़ी है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे पुरानी बातें याद आती हैं या नहीं, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इशिका की तरफ देख रहा था जो पूरी शिद्दत से किचन में काम करने में खोई हुई थी। अभिमन्यु तुरंत इशिका के पास गया और उसकी मदद करने के बजाय उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। इशिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने चेहरे के भावों को सख्त किया और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, काम से बचने का तरीका अच्छा है मिस्टर राजवंश, और आपने जो सब्जियां खराब की हैं उनके बारे में डिस्कशन करना अभी बाकी है। बोलते हुए इशिका ने अभिमन्यु की कटी हुई सब्जियों की तरफ इशारा किया जो बहुत बुरे और बेतरतीब तरीके से फैली हुई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं चॉपिंग मशीन का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने ही चाकू से काटने की जिद की थी। मुझे ये सब नहीं आता, फिर भी देखो तुम्हारी हेल्प के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा। बिल्कुल, अब मेरी थोड़ी और हेल्प करो और इन्हें सही से कट करो ताकि कम से कम ये वेस्ट तो ना हो, इशिका ने अभिमन्यु को खुद से दूर जाने का इशारा किया। अभिमन्यु इशिका के साथ अच्छा वक्त बिता रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु से बात करने के बाद आशिका को भी थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। वो बाथरूम से बाहर आई तो अभिमन्यु उसे आसपास दिखाई नहीं दिया। आशिका ने आखिरी बार उसे उनके कमरे में ही बने दरवाजे से दूसरे कमरे में जाते देखा था। वो उसके पीछे वहां गई तो उसने देखा अभिमन्यु काम में खोया हुआ था। शादी की वजह से मैंने तुम्हारा काम और डिले कर दिया, पहले तुम उस आशी से बचने के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे, क्या अभी भी तुम मुझसे वो सब करवाना चाहते हो, आशिका ने अंदर आते हुए कहा। देखा जाए तो उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे अपने प्लान में हमेशा इन रखेंगे। तुम बस पूरी तैयारी करो, हम एक स्टेप पीछे रहेंगे। जब भी कोई हम दोनों के खिलाफ कोई साजिश करेगा तो हम बदले में एक बड़ा सा बम फोड़ देंगे, अभिमन्यु ने जवाब दिया। देखा जाए तो लगभग सब हो ही गया है और हम एक स्टेप पीछे है, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही हूँ। मेरा काम हो गया है तो क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आशिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, अब तो तुम मेरी वाइफ बन गई हो, ऊपर से कल रात मैंने देखा कि तुम कितनी बोल्ड हो, अब तो दूर जाने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। उसका जवाब सुनकर आशिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, वो सब तुम्हारे डैड को ये साबित करने के लिए था कि मैं उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ। आगे तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल चल रहे हैं उनको अभी छुट्टी पर भेज दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो बहुत गलत बात है, किसी ने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया और अगली सुबह उनका काम निकल गया तो मुझे इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया, अभिमन्यु ने ड्रामेटिक वे में कहा। तुम चाहो तो इसके लिए मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, पर फिलहाल कोई चांस नहीं है मिस्टर राजवंश, आशिका ने कंधे उचकाकर जवाब दिया और वहां से जाने लगी। अभिमन्यु कल रात ही अच्छे से जानता था कि आशिका किस मकसद से उसके पास आ रही है, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका
और आज जब वो उसके करीब आने से मना कर रही थी, तब भी अभिमान ने उसे फोर्स करना सही नहीं समझा। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब सच में आशिका दिल से उसके पास आकर उसे एक्सेप्ट करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ आशी तृप्ति से मिलने के लिए जा रही थी। सुबह राजवंश फैमिली में जो भी हुआ उसके बाद आशी को एक बात समझ आ गई थी कि सिंघानिया फैमिली अभिमान को दोबारा पाने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है। ऐसे में तृप्ति ही थी जो उल्टी सीधी चालें चलकर अभिमान और आशिका को अलग कर सकती थी। उसे कुछ भी करके अभिमान को फिर से हासिल करना था और आशिका को उनकी जिंदगी से दूर भेजना था, क्योंकि आज तो आशिका के अभिमान की पत्नी होने का सच सामने आया था। कल को सिंघानिया फैमिली के सामने अगर आशिका की उनकी बेटी होने का सच सामने आ जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती।